एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमें तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर। मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, हरेक श्रोतागणों के संग हो और उन्हें तेरा वचन सुनने और समझने के लिए मदद कर, और पिता परमेश्वर उन्हें तेरे राह में चलने के लिए अगुवाई कर, उन्हें तेरा आशीष दे। मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सृष्टि और जल प्रलय। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें जो लिखा है दूसरा पत्रस उसका 3:5-6 में। वहां कहता है, वे ठट्ठा करने वाले यह बात जानबूझकर भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में थी। उसी के द्वारा उस समय का संसार जल में डूबकर नाश हो गया। दूसरा पत्रस 3:5-6। प्यारो, बाइबल जल प्रलय को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रस्तुत करती है जिसने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया और साथ ही दूसरे आगमन पर विश्वव्यापी न्याय के एक प्रतीक के रूप में भी, एक ऐतिहासिक घटना के रूप में या धर्म निरपेक्ष विज्ञान द्वारा तर्क दिए गए लंबे युगों की एक वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। स्थानीय या विश्वव्यापी जल प्रलय था। सृष्टि पर केंद्रित अध्ययनों की श्रृंखला में जल प्रलय पर एक पाठ क्यों शामिल किया जाना चाहिए? साहित्य और विषयगत दृष्टिकोण से जल प्रलय सृष्टि की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। वास्तव में अधिकांश पुराने नियम के विद्वान उत्पत्ति 1-11 अध्याय, सृष्टि, जल प्रलय, बेबलोन की कहानियां को एक विशिष्ट साहित्य इकाई के रूप में मान्यता देते हैं। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सृष्टिवादियों के लिए, जो एक शाब्दिक हालिया सृष्टि में विश्वास करते हैं, जल प्रलय बाइबल में प्रस्तुत एकमात्र ऐसी घटना है जो इतनी बड़ी और विनाशकारी है कि अब पृथ्वी की सतह को ढकने वाले जीवाश्म युक्त चट्टानों की परतों वाले भूगर्भीय स्तंभ की उत्पत्ति के लिए एक वैकल्पिक व्याख्या प्रदान करती है। आज के पाठ में हम बाइबल को यह देखने के लिए देखना चाहेंगे। पहला है, क्या जल प्रलय की कहानी को ऐतिहासिक रूप से समझा जाना था, और दूसरा, क्या लेखक का इरादा इसे एक विश्वव्यापी घटना के रूप में चित्रित करना था? प्यारो, हालांकि हम बाइबल के इस अभिलेख को स्वीकार करते हैं कि नूह के जल प्रलय ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था, फिर भी ऐसे विचार हैं जो बताते हैं कि वास्तव में जल प्रलय केवल एक स्थानीय घटना थी। यह सच है कि पृथ्वी या भूमि के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्द एरेटस हमेशा पूरे भूमंडल को संदर्भित नहीं करता। इसका स्थानीय भौगोलिक या राजनीतिक अर्थ भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी में हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम इज़राइल की भूमि की बात करते हैं और मानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से यह एक छोटा सा क्षेत्र है। अन्य मामलों में इसका अर्थ पूरी दुनिया हो सकता है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी में, जो उत्पत्ति 1-11 अध्यायों में कई बार आता है। इसी प्रकार सारी पृथ्वी कोलहारेटस शब्द के स्थानीय और विश्वव्यापी दोनों अर्थ हो सकते हैं। मुख्य बात संदर्भ है। हालांकि उत्पत्ति 7:2-8:9 में जल प्रलय की कहानी में एक अनोखा वाक्यांश आता है। ये आयतें हमें बताती हैं कि जल प्रलय के पानी ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। जल प्रलय के अलावा यह वाक्यांश केवल सृष्टि की कहानी, उत्पत्ति 1:29 में और बाबेल के गुम्बद की कहानी जो मिलता है उत्पत्ति 11:4-9 पद में इसी में ही इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों कहानियों का संदर्भ स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक है। जल प्रलय की कहानी में एक ही वाक्यांश का प्रयोग यह दर्शाता है कि लेखक का यहाँ भी एक सार्वभौमिक अर्थ था। उत्पत्ति 6:17-7:6 में नूह के जल प्रलय को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्द हमें क्या बताते हैं? एक और तथ्य है जो विश्वव्यापी जल प्रलय की ओर संकेत करता है, वह है वह इब्रानी शब्द जिसे लेखक ने जल प्रलय का वर्णन करने के लिए चुना। हालांकि लेखक स्थानीय जल प्रलय सेथेप, नाचल, नाहर, जाराम का वर्णन करने के लिए कई इब्रानी शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था, उसने विश्वव्यापी जल प्रलय को अलग करने के लिए एक विशेष अनोखे शब्द का इस्तेमाल किया, मबूल, जैसा कि सीएफ कील और एफ डेलिज ने अपनी ओल्ड टेस्टामेंट द पेंटाटेच पर टिप्पणियों में बताया है। मबूल एक पुराना शब्द है जो विशेष रूप से नूह के जल के लिए गढ़ा गया था। ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन एडमंड्स 9 में हम पाते हैं पृष्ठ 143 में। यह एक ऐसा शब्द था जिसे प्राचीन लोग विशेष रूप से स्वर्ग से बाढ़ के द्वारों के संदर्भ में समझते थे जो आकाश से गिरने वाले जल को रोकते थे। गेरहार्ड वॉन रेड ने मबूल शब्द का अर्थ यह लगाया कि हमें जल प्रलय को एक ऐसी आपदा के रूप में समझना चाहिए जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रणाली का विनाश शामिल है। लिखता है जेनेसिस, जो कि छपा है लंदन SCM प्रेस 1961 में पृष्ठ 128 में। विश्वव्यापी जल प्रलय के बाइबल विवरण के अलावा उत्पत्ति 1:11 में आपको और हमें कौन से विवरण दिखते हैं जो प्रकृति में सार्वभौमिक हैं? आइए हम इसे आगे पढ़ें। उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों में चलने वाला एक केंद्रीय विषय उनका सार्वभौमिक संदर्भ है। वास्तव में सृष्टि की कहानी का एक मुख्य बिंदु यह है कि ईश्वर मेसोपोटामिया के झूठे देवताओं के विपरीत ने सब कुछ बनाया। इसे सच्चा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर ने बनाया है। इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया हो। यह सार्वभौमिक विषय इन शुरुआती अध्यायों के अन्य मुद्दों तक चलता है। उदाहरण के लिए पाप और पतन सार्वभौमिक समस्याएं थी क्योंकि सभी मनुष्यों ने पाप किया और गिरे हैं, ना कि केवल कुछ ने। इसके अलावा उधार का वादा जो वाचा के साथ दिया जाता है सभी लोगों को दिया जाता है, ना कि कुछ लोगों को। उत्पत्ति 11 सभी लोगों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। यह इन सार्वभौमिक विषयों के बीच में है कि जल प्रलय की कहानी प्रकट होती है। स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 1:11 के बाकी हिस्सों से जल प्रलय की कहानी को निकालना असंगत और अनुचित होगा। परमेश्वर ने जल प्रलय को क्यों भेजा, आप क्या सोचते हैं? आइए हम उत्पत्ति 6:5-7-11-13 पद से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम बाइबल में पाते हैं पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। मानवीय दुष्टता कितनी व्यापक थी उसे हम उत्पत्ति 6:12 और पहला पत्रस 3:20 पढ़कर जान सकते हैं। जहाज का विशाल आकार, जल प्रलय के पानी से ढके पहाड़ों की ऊंचाई और जानवरों का विशाल संग्रह स्थानीय जल प्रलय सिद्धांत का खंडन करते हैं और परमेश्वर के वचन की सच्चाई की पुष्टि करते हैं। बाइबल के अनुसार जल प्रलय का पृथ्वी पर भौतिक प्रभाव पड़ा। इसके बारे में हम उत्पत्ति 7:4-11 तथा 17-23 में पा सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग बाइबल की इस शिक्षा को मानते हैं कि जल प्रलय एक विश्वव्यापी प्रलयकारी घटना थी, उनमें भी इसकी शक्ति और विनाश की सीमा को कम आंकने की प्रवृत्ति है। जल प्रलय की कल्पना करना आसान है, बस एक ऐसी स्थिति के रूप में जहां आकाश से भारी वर्षा हुई, पानी बहुत गहरा हो गया और सब कुछ डूब गया। हालांकि यदि बाइबल अपने चित्रण में सटीक है तो इसमें शामिल शक्तियां कल्पना से परे हैं। कोई भी आधुनिक तुलना बाइबल द्वारा वर्णित प्रक्रियाओं या परिणामों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा प्रतीत होता था कि पानी बादलों से विशाल झरनों के रूप में बह रहा है, नदियां अपनी सीमाओं से टूटकर घाटियों में बह रही थी, पानी की धारें अवर्णनीय बल के साथ धरती से फूट पड़ी, जिससे विशाल चट्टाने सैकड़ों फीट ऊपर हवा में उछल गई और गिरते हुए ये चट्टाने जमीन में गहराई तक धंस गई। हम पाते हैं यह विवरण पेट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स पृष्ठ 99 में। नूह के दिनों में दार्शनिकों ने घोषणा की थी कि दुनिया का पानी से विनाश असंभव है, इसलिए अब ऐसे वैज्ञानिक हैं जो यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया आग से नष्ट नहीं हो सकती, कि यह प्रकृति के नियमों के विपरीत होगा। पेट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स पृष्ठ 103 में। लेकिन प्यारो, बाइबल कहती है कि दुनिया के अंत में न्याय होगा, पापियों और धर्मियों का न्याय होगा, और परमेश्वर पाप को मिटाने के लिए स्वर्ग से आग बरसाएगा। यह बाइबल में लिखी हुई है। यह मानते हुए कि आग की बाढ़ आना उतना ही निश्चित है जितना कि पानी की बाढ़ आना जो बाइबल में लिखी है, हम अपने आप को तैयार करें और दूसरों को भी इस आने वाली घटना से अवगत कराएं और उन्हें भी हम मदद करें कि वे लोग परमेश्वर से मिलने के लिए उस दिन तैयार हों। प्यारो, संभवत सबसे विवादास्पद विषयों में से एक जिस पर कई ईसाई संप्रदायों में बहस हो रही है वह यह है कि इस दावे से कैसे संबंधित हो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाश्म और चट्टाने ग्रह पर मनुष्यों की पहली उपस्थिति से पहले जीवनों के लाखों वर्षों और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दावा 3 बुनियादी बाइबल के दावों का खंडन करता है। पहला, पृथ्वी पर सारा जीवन, ना कि केवल मनुष्य, ईश्वर के बोले गए शब्द उत्पत्ति 1:31-2:1-2 तथा यूहन्ना 1:1-3 द्वारा सृष्टि के मूल 6 दिवसीय सप्ताह उत्पत्ति 1:1-31 के भीतर एक साथ उत्पन्न हुआ। इसे परमेश्वर ने अपने वचन से उत्पत्ति की। दूसरा, आदम और हवा के पतन से पहले दुनिया में कहीं भी मृत्यु नहीं थी। रोमियो 5:12-14, रोमियो 8:9-22। और तीसरा, एक विश्वव्यापी जल प्रलय था जिसने जहाज में संरक्षित लोगों को छोड़कर सभी गैर समुद्रीय जीवन रूपों को मार डाला। उत्पत्ति 7:21-23 और दूसरा पत्र 3:3-7। इसके अलावा यह बाइबल में निहित इस सुझाव का भी खंडन करता है कि सृष्टि का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में एक अपेक्षाकृत हाल की घटना थी। लोग इसका खंडन करते हैं, इसमें विश्वास नहीं करना चाहते हैं। जल प्रलय के इतिहास में प्रेरणा ने वह सब समझाया है जो अकेले भूविज्ञान कभी नहीं समझ सकता। सृष्टिवादियों के पास विकासवादी वैज्ञानिकों द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चुनौतियों के जवाब नहीं हैं। फिर भी प्रकृति में ऐसी कई चीजें पाई गई हैं जिनकी व्याख्या करना आज भी मुश्किल लगता है। विश्वासियों के लिए असली सवाल यह है कि हम किस अधिकारी पर भरोसा करें? क्या हम संसारिक विज्ञान के निष्कर्षों पर चलते हैं जो बार बार बदलते रहते हैं, या हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं? प्यारो, हमें विज्ञान, संसारिक विज्ञान के जगह हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। संसारिक विज्ञान के बातें बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन कभी नहीं बदलता है। यीशु और नए नियम के लेखकों ने जल प्रलय को अंतिम न्याय से जोड़ा है। इससे जल प्रलय की व्यापकता के बारे में पता चलता है। इसे हम पा सकते हैं मत्ती 24 का 38-29 में और दूसरा पत्रस 2 का 4-9 में तथा दूसरा पत्रस 3 का 5-7 में। उदाहरण के लिए पत्रस नूह के सर्वव्यापी जल प्रलय को समय के अंत में होने वाले न्याय के प्रतीक या उदाहरण के रूप में उद्धृत करता है। उसने आग द्वारा एक विश्वव्यापी सर्वव्यापी जल प्रलय की कल्पना की थी, दूसरा पत्रस 3:5-7। हालांकि यीशु का मुख्य तर्क यह है कि न्याय लोगों पर अचानक आया, लेकिन न्याय के सार्वभौमिक पहलू पर भी निचोड़ इस बात पर है कि कोई भी नहीं बचेगा। यदि कुछ लोग पहले न्याय से बच गए तो दूसरे न्याय का खतरा निश्चित रूप से कम हो जाता है, मत्ती 24:38-39। जबकि पृथ्वी का संपूर्ण विनाश भूतकाल और भविष्यकाल एक भयावह अवधारणा है, परमेश्वर अपने अनुयायियों के लिए प्रतिज्ञा छोड़ा है, जो कि हम पाते हैं भजन संहिता 91:9-10 में तथा भजन संहिता 27:5 में और भजन संहिता 91:14 में। बहन एलन वाइट लिखती हैं पेट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स में पृष्ठ 110 में, लेकिन धर्मी लोग इन हलचलों के बीच सुरक्षित रहेंगे जैसे नूह जहाज में सुरक्षित रहा था। परमेश्वर उनका शरण स्थान होगा और वे उसके पंखों के नीचे शरण लेंगे। पहला पत्रस 3:20-21 के अनुसार जल प्रलय एक विशेष अनुभव का प्रतीक है जिससे परमेश्वर के सभी अनुयायियों को गुजरना है। यह प्रतीक क्या है? यह प्रतीक दूसरा जन्म है जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं। बाइबल यह प्रतीक विज्ञान का एक पहलू यह है कि जिस चीज की ओर यह संकेत करता है प्रतिरूप उसकी वास्तविकता स्वयं उस प्रतीक की वास्तविकता की गारंटी देती है। इस मामले में बाइबल यह जल प्रलय की वास्तविकता इसे एक ऐसे अनुभव के रूप में प्रस्तुत करती है जिससे परमेश्वर के सभी अनुयायियों को गुजरना ही चाहिए, स्वयं के लिए मरना और मसीह में एक नए जीवन में पुनर्जन्म लेना, एक ऐसा अनुभव जिसका प्रतीक बपतिस्मा है। प्यारो, बाइबल सिखाती है कि नूह के जल प्रलय से पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी। यह जल प्रलय न केवल ऐतिहासिक था बल्कि आने वाले न्याय की वास्तविकता का प्रतीक भी है। पहले न्याय की निश्चितता अंतिम न्याय की पुष्टि है। हालांकि दुनिया का आने वाला न्याय गंभीर और निकट है, परमेश्वर ने फिर से कृपा पूर्वक बचाव का एक मार्ग प्रदान किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस न्याय और उद्धार के मार्ग दोनों की असंता की घोषणा करें। आने वाले न्याय में पापी और पाप को स्वर्ग से आग बरसाने के द्वारा नाश किया जाएगा। परमेश्वर इससे बचने के लिए लोगों को कहता है कि उसका योजना में विश्वास करो, जो कि वह अपना बेटा को इस जगत में भेजा और उसमें जो विश्वास करता है वह पाप से बचाया जाएगा और जो मन फिराता है उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और वह स्वर्ग राज्य उन्हें दिया जाएगा। इसलिए आइए प्यारो, हम पाप को छोड़े और परमेश्वर की योजना उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। उसके द्वारा पाप का क्षमा प्राप्त करे और अनंत जीवन उसे प्राप्त करे और न्याय से उसके दंड से बचे। परमेश्वर आपको और हम सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम सबों को तो नजदीक ला और हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरे प्रेम को स्वीकार करना चाहते हैं, हम तेरे योजना को अपनाने चाहते हैं। हमें पाप और उसके दंड से बचा, हमें तुझ में विश्वास में जीने के लिए मदद कर और हमें अनंत जीवन अनंत राज दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenchrist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद में कामना करते हैं।